नमस्कार भारत, 13 नवंबर दिन सोमवार, स्वीकार कीजिए संदीप सोनी का नमस्कार। ईरान इराक सीमा पर भूकंप की वजह से कम 61 लोगों की मौत। दिल्ली समेत उत्तर भारत में धुंध और प्रदूषण पर नियंत्रण बारिश के भरोसे।
पंजाब में, हरियाणा में और जो नॉर्थ राजस्थान का एरिया है वहाँ पर रेनफॉल पूरे एरिया में होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए उस एरिया से जो हमारा पॉल्यूशन आ रहा है, जो स्मोक की वजह से आ रहा है, वो नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा।
सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। और साप्ताहिक खेल खिलाड़ी में सुनिए चर्चा भारत में फुटबॉल के भविष्य पर।
उम्मीद थी कि बदलाव होगा, कि फेडरेशन को पूरा भारत देखना चाहिए। पहले 125 150 प्रतियोगिता होते थे ऑल इंडिया लेवल पे भारत में, अब मेरे ख्याल से 20 भी नहीं होते, ये साल तो दूरन भी नहीं होने वाला।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप राय से। ईरान और इराक के बीच सीमावर्ती इलाके में देर रात भूकंप आने की खबर है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इसकी तीव्रता 7.3 मापी गई है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की 50वीं सालगिरह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंच गए हैं। उन्होंने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संक्षिप्त मुलाकात भी की। दोनों नेताओं के बीच औपचारिक मुलाकात आज होने वाली है। मोदी फिलीपींस, जापान और ऑस्ट्रेलियाई नेताओं से मिलेंगे। 8 दिन पहले सऊदी अरब से ही अपने इस्तीफे की घोषणा करने वाले लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी ने कहा है कि वो जल्द अपने वतन को लौटेंगे। उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है, स्वीकार नहीं किया गया है, और लेबनान में इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि उन्हें जबरदस्ती रोक कर रखा गया है। इस संकट में पहली बार सार्वजनिक हुए हरीरी का कहना था कि ताकतवर पार्टी हिजबुल्लाह की गतिविधियां देश के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। मैं एक सकारात्मक झटका देना चाह रहा था, नकारात्मक नहीं, ताकि लेबनानी जनता उस खतरे को जान सके जिसका हम सामना कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहने जा रहा कि हम उस समय भी निष्पक्ष बने रहेंगे जबकि लेबनान के ग्रुप यमन में लड़ रहे हों या हम सीरियाई सरकार के साथ करीबी बढ़ा रहे हों। मैंने इसे लेकर कई बार चेतावनी दी है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं जनता के हितों को लेकर संजीदा हूँ। मैंने इस्तीफा दिया था। मैं जानता हूँ कि ये सही तरीका नहीं था, लेकिन मुझे अपनी सुरक्षा के लिए भी कुछ उपाय करना था ताकि मैं सुरक्षित लौट सकूँ। ये थे साद हरीरी के शब्द। अपने मैराथन एशियाई दौरे में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वियतनाम के बाद फिलीपींस में भी विरोध का सामना करना पड़ा है। मनीला में अमरीकी दूतावास में ट्रंप के पहुंचने से पहले सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और पानी की बौछार डाली। प्रदर्शनकारी डंप ट्रंप और अमरीकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद लिखे पोस्टर हाथों में लिए नारे लगा रहे थे।
Trump is no friend of the Filipino people. He brings war. He brings economic impositions. He wants to bring the US war on terror.
ट्रंप फिलीपींस की जनता के दोस्त नहीं हैं। वो युद्ध लाते हैं, आर्थिक बोझ बढ़ाते हैं। वो चरमपंथ के खिलाफ अमरीकी युद्ध को फिलीपींस पर थोपना चाहते हैं। वो हमें उत्तर कोरिया के संकट में घसीटना चाहते हैं। वो यहाँ फिर से अपने सैन्य बेस बनाना चाहते हैं। ऐसी चीजें फिलीपीनी जनता के हित में नहीं हैं। ये थे एक प्रदर्शनकारी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन और वियतनामी नेताओं के बीच सहमति बन गई है। दोनों पक्ष समुद्री मामलों में सहयोग को बढ़ाने और इलाके में शांति और स्थायित्व के लिए साथ काम करने पर रजामंदी जताई है। दक्षिणी चीन सागर को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है और चीन ने वहां कृत्रिम द्वीप बना लिया है। मनोरंजन उद्योग में यौन उत्पीड़न की घटनाओं की ओर ध्यान खींचने के लिए हॉलीवुड में हजारों लोगों ने मार्च निकाला। इसमें शामिल लोगों ने मी टू लिखी हुई टी शर्ट पहन रखी थी। कुछ लोगों के टी शर्ट पर नो मोर सेक्सुअल एब्यूज और रेप इज नॉट जोक लिखा हुआ था। हॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक हार्वी वाइनस्टीन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद पूरी दुनिया में मी टू के नाम से अभियान चल पड़ा है और पीड़ित खुलकर आपबीती बता रहे हैं। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में 3 महीने में पहली बार मानवीय सहायता पहुंची है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत, सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं ईरान इराक से, जहां बीती रात जोरदार भूकंप आया है। भूकंप की वजह से ईरान इराक दोनों देशों में कई लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। इस खबर पर और जानकारी के लिए मेरे साथी संदीप राय स्टूडियो में मौजूद है। संदीप, बताइए इस खबर पर अभी तक क्या जानकारी सामने आई है?
जी संदीप, अभी तक जो जानकारी आई है उसमें पता चला है कि ये भूकंप ईरान और इराक के सीमाई इलाके में आया है। इसे बहुत शक्तिशाली भूकंप माना जा रहा है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने इसकी तीव्रता को 7.3 बताया है। ईरान की सरकारी मीडिया का कहना है कि देश की सीमा में कम 61 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। हताहतों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस भूकंप का केंद्र उत्तरी इराक के कुर्द इलाके में हलाब्जा शहर से करीब 34 किलोमीटर दूर दक्षिण में बताया जा रहा है। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसे पूरे इराक के अलावा कतर, तुर्की, इसराइल और कुवैत तक में महसूस किया गया है। लोग दहशत के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और प्रभावित इलाकों में कई जगहों पर बिजली की आपूर्ति बाधित होने की भी खबरें आ रही हैं। इराक में लोग डर के मारे सड़कों पर निकल आए हैं। भूकंप की तीव्रता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उत्तरी बगदाद के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसे लगा कि कहीं बड़ा धमाका हो गया है। सड़क से साफ दिखाई दे रहा था कि इमारतें हिल रही हैं। लोग अपने घरों को लौटने में भी डर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो अभी तक तस्वीरें सामने आई हैं उसमें सड़कों पर भीड़ दिखाई दे रही है। कुछ इमारतों के कांच टूटने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान के अस्पतालों की जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें घायल दिख रहे हैं जिनके पैरों में प्लास्टर लगा हुआ है। कुछ उनमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएँ भी शामिल हैं। ईरान के न्यूज़ चैनल इरिन के मुताबिक बचाव कर्मियों को देश के पश्चिमी हिस्से में राहत और बचाव के लिए तत्काल भेज दिया गया है। ईरान के रेड क्रिसेंट संस्था के प्रमुख मुर्तजा सलीम ने इसी चैनल से बातचीत में कहा है कि 8 गांवों में भारी नुकसान हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान के सारपोल ए जिहाब शहर को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा है। ईरानी समाचार एजेंसी इसना के अनुसार इराकी सीमा के पास स्थित करमन शाह प्रांत में 300 लोगों के घायल होने की भी खबर
है। यदि मेरी जानकारी सही है तो कुछ वर्ष पहले भी ईरान या इराक में इसी तरह का एक भूकंप आया था जिसमें कई लोग मारे गए थे।
जी, ईरान में करीब 1.5 दशक पहले दिसंबर 2003 में एक ऐसा ही शक्तिशाली भूकंप आया था। ईरान के बाम शहर में इसकी तीव्रता 6.3 थी उस समय, जिसमें करीब 30,000 लोग मारे गए। इससे शहर को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, लेकिन अभी जो भूकंप आया है वो 2003 के मुकाबले 10 गुना अधिक तीव्रता वाला है। ऐसे में ये नुकसान के बढ़ने की आशंका प्रबल हो गई है।
ईरान इराक सीमा पर भूकंप का जोरदार झटका, कम से कम 61 लोगों की मौत और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। इस खबर पर जानकारी दे रहे थे संदीप राय। और इससे पहले कि हम अगली खबर की ओर बढ़ें, हम आपको मीटर बैंड संबंधी जानकारी सुना रहे हैं जिससे आपको पता चल सके कि वो कौन सी नई फ्रिक्वेंसीज हैं जिस पर आप हमारे रेडियो कार्यक्रम को रेडियो के जरिए सुन सकते हैं।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका पर सुनवाई होने वाली है जिसमें सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। याचिका में दावा किया गया है कि सीबीआई एक ऐसे मामले की जांच कर रही है जिसमें राकेश अस्थाना का नाम शामिल है। इस याचिका में राकेश अस्थाना को सीबीआई का विशेष निदेशक बनाने के खिलाफ कुछ और भी दलीलें दी गई हैं। पूरा मामला क्या है बताने के लिए बीबीसी संवाददाता दिनेश उप्रेती स्टूडियो में मौजूद हैं।
दरअसल संदीप जी, राकेश अस्थाना जो है वो गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और अनिल सिन्हा के रिटायर होने के बाद में इसी महीने की शुरुआत में वो रिटायर हुए हैं। उनके रिटायर होने के बाद में राकेश अस्थाना को स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई बनाया गया है। इसी पे एक गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज है, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि ये फैसला अवैध और मनमाना है क्योंकि राकेश अस्थाना के खिलाफ हवाला से संबंधित कुछ जाँचें हैं जिनकी जांच खुद सीबीआई कर रही है। और क्योंकि सीबीआई में डायरेक्टर के बाद में स्पेशल डायरेक्टर यानी कि विशेष निदेशक का पद दूसरा सबसे बड़ा पद होता है और वह एजेंसी द्वारा देखे जा रहे लगभग सभी महत्वपूर्ण मामलों का निरीक्षण करता है। ऐसे में राकेश अस्थाना की नियुक्ति अगर होती है तो जांच शायद निष्पक्ष न हो पाए,
ऐसी आशंका जताई जा रही है।
तो दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार को अस्थाना के चयन और नियुक्ति से संबंधित सभी रिकॉर्ड पेश करने चाहिए। शायद 10 साल में ये पहला मौका है जब डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है। सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख पहले से भी कई बार जो है वो बड़ा आक्रामक रहा है, वो कई बार कटाक्ष कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पिंजरे में बंद तोता और बंद जांच एजेंसी तक कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस तरह के मामले सीबीआई को लेकर आए थे तो उसने कहा था कि देश में न्याय का राज चलने के लिए सीबीआई को सरकार से स्वतंत्र होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने दो बातें कही थी। एक तो सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होना चाहिए जिससे कि सरकार उन्हें हटा ना सके, बशर्ते कि डायरेक्टर के खिलाफ कोई गंभीर अनुशासनात्मक आरोप न हो। दूसरी बात यह है, अदालत ने यह कहा था कि सीबीआई का जो जॉइंट डायरेक्टर होता है उसके ऊपर जितने भी पद होने चाहिए उनका तबादला या प्रमोशन हो तो वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और गृह सचिव और निजी सचिव की सहमति से ही होना चाहिए।
यानी नियुक्ति के तरीके और जो कथित मामले का जिक्र हो रहा है उसकी वजह से राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर विरोध जताया जा रहा है।
जी, हालांकि जो है सीबीआई डायरेक्टर की जो नियुक्ति होती है वो एक कॉलेजियम करता है जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और विपक्ष का नेता या फिर सबसे बड़े दल का नेता और प्रधान न्यायाधीश, जो इनका कॉलेजियम होता है, वो सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति करता है। लेकिन उस कॉलेजियम की बैठक नहीं हो पाई और इस वजह से जो है राकेश अस्थाना को इन्होंने विशेष निदेशक सीबीआई नियुक्त किया है।
सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस बारे में और जानकारी अभी सुन रहे थे आप दिनेश उप्रेती की जुबानी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शनिवार और रविवार को दिल्ली की सड़कों पर बाकी दिनों के मुकाबले ट्रैफिक कुछ कम रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस दौरान दिल्ली में प्रदूषण भी कम हो जाता है। प्रदूषण संबंधी ताज़ा आंकड़े इसी ओर इशारा कर रहे हैं। इस खबर पर और जानकारी के साथ बीबीसी संवाददाता मानसी दास।
देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर रविवार को 460 तक पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार जहां यह शनिवार को 403 के स्तर पर था, वहीं रविवार को यह बढ़कर 460 तक हो गया। इसके साथ ही प्रदूषण को लेकर लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई। दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति कहते हैं कि प्रदूषण इतना ज्यादा है कि हम सांस भी नहीं ले पा रहे हैं।
पॉल्यूशन मतलब इतना ज्यादा है कि हम सांस भी नहीं ले सकते। हमारा जो पॉल्यूशन है वो इमरजेंसी लेवल पे चल रहा है।
प्रदूषण के इस बढ़े स्तर पर पर्यावरण से जुड़ी संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की अनुमिता राय चौधरी कहती हैं,
जो ये वो मिक्सिंग हाइट जो बाउंड्री लेयर की बात करते हैं वो 1600 मीटर की ऊंचाई से 45 मीटर तक नीचे आ गए थे। फिर से वो सुबह आज सुबह वो फिर ऊंचाई पे गई, पर अभी वो कह रहे हैं कि अभी फिर से ऐसा हुआ है कि अभी फिर 45 मीटर तक आ चुकी है। तो ये चेंजेस तो भी होते ही रहेंगे। आज शहर में ना तो बाहर से कुछ आ रहा है और ना तो शहर से के अंदर से कुछ बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शहर में जो प्रदूषण है वो पूरा यहाँ पे अंदर दब चुका है।
इधर मौसम विभाग का कहना है कि हवा चले या बारिश हो तभी स्थिति में सुधार होने की संभावना है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव के अनुसार,
तो अभी जो फिलहाल तो हमारे पास जो है अभी लाइट विंड चल रही है और विंड की थोड़ी सी स्ट्रेंथ होने की पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा तो रिड्यूस होगा। पंजाब में, हरियाणा में और जो नॉर्थ राजस्थान का एरिया है, जम्मू कश्मीर है, वहां पर रेनफॉल पूरे एरिया में होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए उस एरिया से जो हमारा पॉल्यूशन आ रहा है, जो स्मोक की वजह से आ रहा है, वो नीचे बैठ जाए, सेटल डाउन हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर जो हमारे पास जो पॉल्यूशन लेवल है उसमें कमी आएगी।
उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में स्थिति में कुछ बदलाव आएगा और दिल्ली और आसपास के लोगों को प्रदूषण से कुछ राहत मिलेगी। मानसी दास, बीबीसी दिल्ली।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया है जिसके मुताबिक केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर है। क्या है इसकी वजह, आइए जानने की कोशिश करते हैं इमरान कुरैशी की इस रिपोर्ट में।
दिल्ली के मुकाबले तिरुवनंतपुरम एक बहुत ही छोटा शहर है। इसकी जनसंख्या 10 लाख है और यहाँ 2.5 लाख घर हैं, लेकिन जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। एक वर्ग किलोमीटर में 3,000 से 5,000 लोग रहते हैं और तटीय इलाकों में उससे भी दुगने लोग रहते हैं और यहाँ 350 टन से भी ज़्यादा कचरा निकलता है। तो क्या वजह है कि तिरुवनंतपुरम कम से कम प्रदूषित शहरों में से एक है? हमने ये सवाल एनजीओ तनाल के जीरो वेस्ट और क्लाइमेट चेंज के डायरेक्टर शिबू नायर से पूछा। उन्होंने कहा,
इट्स एक्चुअली द गवर्नमेंट पॉलिसी बिकॉज वन केरला इज ऑलरेडी केरला इज एज अ सोसाइटी इट इज नोन फॉर।
खास तौर से देखें तो कचरा प्रबंधन में जो सरकार की विकेंद्रीकृत नीति है उससे फर्क पड़ा है। जैविक अवशेष को घरों पर ही नष्ट किया जाता है जबकि सरकार या नगर निगम प्लास्टिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को रिसाइक्लिंग प्लांट में भेज देती है। ये थे शिबू नायर के शब्द। शिबू नायर ये भी कहते हैं कि पहले तो लोग सरकार की नीति से खुश नहीं थे लेकिन जब आवारा कुत्तों का खतरा बढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि कचरे से निपटना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम में एक और अहम बात यह है कि यहाँ दूसरे शहरों की तरह उद्योग नहीं है। इकोलॉजिस्ट एस फैजी कहते हैं,
primarily because the absence of heavy polluting industries, so that makes our
दरअसल यहाँ ज्यादा उद्योग नहीं है जिसकी वजह से तिरुवनंतपुरम में प्रदूषण कम है और जो उद्योगों में निवेश हुआ है वो आईटी और छोटे उद्योगों में किया गया है लेकिन आत्मसंतुष्ट होने के लिए तिरुवनंतपुरम को बचना पड़ेगा। ये थे एस फैजी के शब्द। मतलब ये कि कई वजहों से तिरुवनंतपुरम में आज प्रदूषण उतना नहीं होगा लेकिन सवाल ये है कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में सरकार और लोगों के बीच किस तरह का सहयोग जारी रहता है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
और आइए अब जानते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कह रहे हैं। संदीप राय एक बार फिर कई अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले पन्ने पर धुंध की खबरें हैं आज।
जी संदीप, आज लगभग सारे अखबारों ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर के अपनी सुर्खी बनाया है और मैं एक एक करके आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान ने लिखा है कि प्रदूषण खतरनाक स्तर के पार, उसने हेडिंग लगाई है अपने शीर्ष पेज पे। जनसत्ता ने लिखा है प्रदूषण से कुछ दिन और राहत नहीं। अमर उजाला की हेडिंग है प्रदूषण कायम, स्कूल खुले, क्योंकि संडे तक दिल्ली सरकार ने स्कूल को बंद कर रखा था। इसके अलावा चित्रकूट में कांग्रेस की जीत को लेकर के भी अखबारों ने सुर्खियाँ बनाई हैं और मनीला में मोदी हमारे प्रधानमंत्री पहुँचे हैं आसियान को लेकर के, बैठक को लेकर के, उसकी भी खबरें हैं हमारे पहले पन्ने पर इन अखबारों में। हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान के अलवर में गाय ले जा रहा एक व्यक्ति मरा पाया गया है। पुलिस जाँच कर रही है कि कहीं ये गोरक्षकों द्वारा की गई हत्या तो नहीं है। अखबार ने लिखा है कि शहर में रेलवे पटरी के पास 35 साल की उम्र की लाश मिली है। जिस पिकअप ट्रक में गायें ले जाई जा रही थीं उसमें सिर्फ एक गाय मिली है, वो भी मरी हुई थी। पुलिस ने गो हत्या का भी मामला दर्ज किया है।
अलवर में पिछले साल भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, पहलू खान की हत्या हुई थी, तब आपको याद
होगा। जी, पहलू खान की हत्या हुई थी, उनको उनके साथ मारपीट हुई थी। इसमें तो ये भी कहा जा रहा है कि गोली चलने का भी अंदेशा है और गोली से शायद उमर की मौत हुई
और
है।
पहलू खान वाले मामले में शायद 2 महीने पहले की बात है, सितंबर की बात है, जब सारे अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था।
जी, बरी कर दिया गया है और इसको लेकर के काफ़ी लोगों ने आपत्ति भी जताई थी। हम आगे चलते हैं। दूसरी खबर है हिंदुस्तान टाइम्स की जिसमें लिखा गया है कि बहुत ही दर्दनाक ये खबर है, कानपुर में 40 साल की एक महिला और उसकी 15 साल की बेटी के साथ रेप की कोशिश हुई है चलती ट्रेन में और बचने के लिए माँ और बेटी चलती ट्रेन से कूद गए। ये दोनों कोलकाता से दिल्ली आ रहे थे और अखबार का कहना है कि कूदने के बाद दोनों घायल हो गए और करीब 2 घंटे तक उन्हें होश नहीं आया। जब उन्हें होश आया तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर पहुँचे जहाँ उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया है। ये यूपी के कानपुर की खबर है। हम अगली खबर चलते हैं। द टेलीग्राफ की एक खबर है जिसमें लिखा गया है कि चीन की बढ़ती चुनौती को देखते हुए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने पहली बार बैठक की है। आसियान देशों में बैठक में इस समय चारों देशों के नेता फिलीपींस की राजधानी मनीला में मौजूद हैं। एक खबर है राजस्थान पत्रिका की जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान में 10,000 डॉक्टरों के सामूहिक इस्तीफे और पिछले 7 दिनों में 30 मौतों के बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है।
समाचार पत्रों की सुर्खियों के बाद मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या अच्छा लगता है श्रोताओं, टीवी देखना या अखबार पढ़ना, फिल्में, कार्टून, म्यूज़िक या डांस के रियलिटी शोज देखना। आपकी पसंद इनमें से जो भी हो, अगली बार जो भी देखें ज़रा गौर से देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपको भी किसी कहानी के भीतर एक और कहानी नज़र आए, ठीक उसी तरह जैसे वस्तुल्ला खान को नजर आई।
अगर कोई बहुत बड़ी या बुरी खबर ना हो तो मुझे करंट अफेयर्स टीवी चैनल्स देखना बिल्कुल पसंद नहीं। अलबत्ता नेशनल ज्योग्राफी और अल जजीरा की दस्तावेजी फिल्में, कार्टून नेटवर्क और म्यूजिक और डांस के रियलिटी शो ज़रूर देखता हूँ। पिछले दिनों सारे गामा पा लिटिल चैम्प देख रहा था और आजकल DID डांस इंडिया डांस देख रहा हूँ। शनिवार के DID में विशाल और हुसैन नाम के दो लड़कों का डांस देख के और उनकी कहानी सुन के मैं खासा भावुक भी हो गया। विशाल और हुसैन एक अलग थलग पिछड़े हुए गांव से आए हैं। गुर्बत की वजह से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, पर नाचने और कुछ कर दिखाने का जुनून है। 2 वर्ष पहले घर में खाना पकाते हुए स्टोव फट गया और विशाल गर्दन से लेकर टांगों तक बुरी तरह झुलस गया। जब उसने अस्पताल से आने के बाद खुद को आईने में देखा तो पहचानने से इनकार कर दिया और घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। मगर विशाल के दोस्त हुसैन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने 1 साल तक विशाल को घर से बाहर निकालने की सरतोड़ कोशिश की और वादा किया कि अगर उसे झुलसने से पहले वाला डांसर नहीं बना सका तो खुद भी कभी नहीं नाचूंगा। हुसैन ने उसे समझा बुझा के वर्जिश और प्रैक्टिस करवा करवा के 1 ही वर्ष में उसी पुराने विशाल में बदल दिया जो कॉन्टेम्प्रेरी डांस की कला के सबब पूरे गांव में हुसैन और विशाल की जोड़ी के नाम से मशहूर था। शनिवार को मैंने देखा कि विशाल की गर्दन, सीने, बाजू और टांगों की खाल जगह जगह से जली हुई थी, मगर उसकी रूह इसी जले हुए शरीर को यूं नचा रही थी और पूरे स्टेज पे यहाँ से वहाँ तक ऐसे उड़ाने भरवा रही थी जैसे खाल के स्याह धब्बे ना हों, हौसले के पंख हों जो उसके दोस्त हुसैन ने उसके बाजुओं पे खुदा के हाथों लगवा दिए। इस एपिसोड में हुसैन ने भी ऑडिशन दिया और दोनों यारों को जजों ने अगले पड़ाव के लिए चुन लिया। मुंतखब होने के बाद हुसैन ने कहा, जब मैंने जलने के बाद इसके चेहरे पे डांस करते हुए पहली मुस्कान देखी तो जो खुशी मिली बयान से बाहर है। और विशाल और हुसैन की कहानी देख और सुन के लाखों दूसरे दर्शकों की तरह मुझे जो खुशी मिली वो उस पीढ़ा से लाखों प्रतिशत ज़्यादा है जिससे भारत और पाकिस्तान के चिल्ली पुकार से लिथड़े करंट अफेयर्स चैनल्स के करोड़ों दर्शक दिन रात गुजरते हैं। मैं विशाल और हुसैन के बारे में बस उतना ही जानता हूँ जितना उन्होंने स्क्रीन पे बताया, पर मैं दोनों की कसम खा के कह सकता हूँ कि ना विशाल के घर में TV है और ना ही हुसैन के घर में, वरना हमें इतनी खूबसूरत जीती जागती इंसानी कहानी शायद देखने को ना मिलती। मेरी दुआ है कि एक दूसरे के लिए उनका जुनून ऐसे ही कायम रहे, वो ऐसे ही एक साथ नाचते रहें और कभी अखबार और TV की शक्ल ना देखें ताकि उनके चेहरे का सुकून और मुस्कान कोई आड़ा टेढ़ा ना छीन सके।
पाकिस्तान से वस्तुल्ला खान की इस डायरी के बाद अब साप्ताहिक अंक खेल खिलाड़ी लेकर हाजिर हैं आदेश कुमार गुप्त।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। इन दिनों श्रीलंकाई क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर है जहां वो 16 तारीख से कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेलेगी। इससे पहले उसने कोलकाता में ही भारतीय बोर्ड अध्यक्ष एकादश के साथ 2 दिवसीय अभ्यास मैच खेला जो बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया। कल श्रीलंका ने 9 विकेट पर 411 रन के स्कोर पर अपनी पहली पारी की समाप्ति का ऐलान किया जो उसका टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर पहले दिन का स्कोर था, जिसके जवाब में भारतीय बोर्ड अध्यक्ष एकादश ने भी जमकर बल्लेबाजी की और 5 विकेट खोकर 287 रन बनाए। कप्तान और विकेटकीपर संजू सैमसन ने 19 चौके और 1 छक्के की मदद से 128 रनों की शतकीय पारी खेली। लाहिरू थिरीमान्ने ने 22 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। जाहिर है कि इस 2 दिवसीय अभ्यास मैच से कुछ खास तो हासिल नहीं होना था, लेकिन पहली पारी में श्रीलंकाई बल्लेबाजों को जरूर जमकर हाथ खोलने का मौका मिल गया। श्रीलंका के सदीरा, समर विक्रम, दिमुत करुणा रत्ने, एंजेलो मैथ्यूज और निरोशन डिकवेला अर्धशतक जमाने में कामयाब रहे। और अब समीक्षा, क्या आई लीग और ISL यानी इंडियन सुपर लीग से ही बदल जाएगा भारतीय फुटबॉल का भविष्य? अभी भारत अपनी मेजबानी में हुए फीफा अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट की कामयाबी का जश्न मना ही रहा था कि बीते कुछ दिनों में ही भारतीय फुटबॉल संघ को पहले तो हाई कोर्ट के झटके और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत का एहसास हुआ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के चुनाव को ये कहकर खारिज कर दिया था कि उन्होंने राष्ट्रीय खेल आचार संहिता का पालन नहीं किया, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय फुटबॉल संघ की सभी समितियों को नियमित रूप से कामकाज की अनुमति दे दी। इससे प्रफुल्ल पटेल के अध्यक्ष के रूप में काम करने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी और भारत के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली के साथ 8 सप्ताह के भीतर भारतीय फुटबॉल संघ संविधान की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इन सबके बीच ISL का नया सीजन 4th संस्करण के रूप में 17 तारीख से शुरू होने जा रहा है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड इस साल नहीं होगा। फुटबॉल समीक्षक और कमेंटेटर नोविका पाडिया भारतीय फुटबॉल संघ के कामकाज को लेकर कहते हैं,
उम्मीद थी कि बदलाव होगा कि फेडरेशन को पूरा भारत देखना चाहिए, उनकी पूरा साल इसी में निकल जाता है एक ISL और आई लीग कराने में। पहले 125-150 प्रतियोगिता होते थे ऑल इंडिया लेवल पे भारत में, अब मेरे ख्याल तो 20 भी नहीं होते। ये साल तो डूरन भी नहीं होने वाला है। ISL शील्ड तो अंडर 19 हो गया, DCM के 20 साल हो गए समाप्त होते, रोवर्स के भी 17 साल हो गए समाप्त होते, तो कई चीजों पे ध्यान देना था।
वैसे होना तो ये चाहिए था कि राष्ट्रमंडल खेल 2010 और उसके बाद पिछले दिनों हुए फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी के बाद भारत में बने नए स्टेडियमों, खासकर फुटबॉल के स्टेडियमों की पहुंच आम आदमी तक होती, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बेहद नाराजगी वाले अंदाज में पूर्व ओलंपियन SS हकीम कहते हैं,
कोई स्टेट काम नहीं करता, एक का दुका कोई स्टेट करा तो करा, सिवाय बैंगलोर एसोसिएशन के, किसी स्टेट ऑफिसर का अपना ग्राउंड नहीं है। अंबेडकर स्टेडियम लेना तो 5,000 रुपया आपको देना पड़ेगा, उसके कहां से लाके देंगे आप?
नए स्टेडियमों की तारीफ तो हर जगह हो रही है, लेकिन उनके दम पर भारत में कोई विदेशी टीम सीनियर टीम से खेलने नहीं आने वाली। नोवी कपाड़िया कहते हैं,
कौन से देश आएंगे वो अलग बात है ना, अपनी टीम के भी तो कुछ स्टैंडिंग हो ना। कोई यूरोप का देश इतनी लंबी यात्रा करके सिर्फ एक सॉल्ट लेक स्टेडियम देखने तो कोई नहीं आएगा, ये क्रिकेट नहीं है, तो ये इतना आसानी से नहीं होने वाला है।
अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जब भारतीय फुटबॉल का नया संविधान सामने आएगा तो उसके बाद भारतीय फुटबॉल का भविष्य कैसा होगा। उधर सिडनी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच खेला गया एकमात्र डे नाइट टेस्ट मैच कल ड्रॉ समाप्त हुआ। कल जब मैच समाप्त हुआ तब इंग्लैंड की महिला टीम का स्कोर दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 206 रन था। कप्तान हीदर नाइट 79 और जॉर्जिया एल्विस 41 रन बनाकर नाबाद थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए 213 रनों की नाबाद पारी खेलने वाली एलिसे पेरी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
खेल खिलाड़ी के साथ ही वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले विश्व समाचार एक बार फिर सुनेंगे।
BBC समाचार। ईरान और इराक के सीमावर्ती इलाके में 7.3 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसमें कम से कम 61 लोग मारे गए हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की 50वीं सालगिरह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंच गए हैं। वो आज अमरीकी राष्ट्रपति से औपचारिक मुलाकात करेंगे। 8 दिन पहले सऊदी अरब से ही अपने इस्तीफे की घोषणा करने वाले लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी ने कहा है कि वो जल्द अपने वतन को लौट आएंगे। अपने मैराथन एशियाई दौरे में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वियतनाम के बाद फिलीपींस में भी विरोध का सामना करना पड़ा है। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीनी और वियतनामी नेताओं में सहमति बन गई है। दोनों पक्ष सहयोग और इलाके में शांति और स्थायित्व के लिए साथ काम करने पर रजामंदी जताई है। BBC समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे संदीप राय, और इस दौरान कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। फेसबुक के जरिए आज हम तकनीकी खामी की वजह से आप तक नहीं पहुंच सके, इसका हमें खेद है। नमस्कार भारत में आज इतना ही। हमारा अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत।